گھر میں پانچ دفعہ نماز پڑھنے کی قواعد ہے, اس کی سیمپلنگ سنگم یوگ پر کیسے لگ رہی ہے؟
کوئی دیہداری دھرم گرو ہوئے ہوں گے جنہوں نے ڈائریکشن ریلے کیا ہوگا. بابا نے کہا سانسوں سانس یاد کرنا ہے, کیا سانسوں سانس یاد کرنا ہے. انہوں نے ڈائریکشن نکالا دن میں کم سے کم پانچ بار یاد کرنا ہے. یہ ڈائریکشن کون سے دھرم کی آتما نے نکالا ہوگا؟ جو اسلام دھرم میں کنورٹ ہونے والی ہوگی اسی نے نکالا ہوگا. جیسے مما نے شریر چھوڑا تو برہما بابا نے ان کا شریر جو ہے مما کا وہ نکی لیک کے کنارے جا کر کے دہ سنسکار کرایا. یہ بھارت کی پرمپرا ہوئی یا ودیش کی پرمپرا ہوئی؟ بھارتیہ پرمپرا ہے, کیونکہ بھارت کے جو لوگ ہیں بھارت واسی پکے پکے سوری ونسی, وہ اسی جنم میں اپنا دیہ کا بھان راکھ کر دیتے ہیں جلا بھنا کے, اگلے جنم میں ان کا دیہ بھان جانے والا نہیں ہے, پکی آتما بن جاتے ہیں, دیوان سارا سواہا ہو جاتا ہے. اس کی یادگار میں ہندوؤں میں آج بھی دیہ کو جلاتے ہیں. وہ بھکتی مارگ والے دیہ کو جلاتے ہیں, ہے واسطو میں کس کو جلانے کی بات؟ دیہ بھان کو جلانے کی بات ہے. اور دوسرے دھرم والے, دوسرے دھرم والے دیہ کو جلاتے نہیں ہیں, دیہ بھان کو جلاتے نہیں ہیں, کچھ نہ کچھ دیہ بھان رہ جاتا ہے, کچھ نہ کچھ دیہ بھان روپی مٹی رہ جاتی ہے جس میں دب کے ختم ہو جاتے ہیں. ان کے جنم اس لیے کم ہو جاتے ہیں, پکی آتما نہیں بن پاتے, 84 جنم نہیں لے پاتے. اس لیے دوسرے دھرموں میں یہ پرتھا پرچلت ہے. کیا کہ وہ جلائیں گے نہیں, کچھ نہ کچھ دیہ بھان بنا رہے, اس لیے مٹی میں دیہ بھان کی مٹی میں دبا دیں گے. براہمنوں کی دنیا میں بھی یہ شوٹنگ کسی نے چالو کی, مما کو تو اگنی میں داہ سنسکار کیا گیا اور نکی لیک میں لے جا کے کیا, مانا جہاں گیان جل کا آگار ہو یا گیان جل کی ندی بہتی ہو یا ساگر کا کنٹھا ہو وہاں جا کر کے دہ سنسکار کرتے ہیں. مسلمان کیا کرتے ہیں؟ ہاں قبر میں دفنا دیتے ہیں, یادگار مانومنٹ بنا دیں گے. برہما بابا کا بھی کسی جلاشے کے کنارے لے جا کے نہیں دفنایا گیا, وہیں پرانگن میں آنگن میں ہی ان کا کریا کرم کیا اور مانومنٹ کیا نام دیا اس کو, شانتی استمب. تو یہ قبر بنانے کی پرتھا بھی اس کا فاؤنڈیشن کہاں پڑتا ہے؟ براہمنوں کی سنگم کی دنیا میں پڑتا ہے. مسلمانوں نے بھارت میں آ کر کے بھارت کے شاستروں کو بھاڑوں میں بھون دیا, پھاڑ پھاڑ کر کے زمین میں گاڑ دیا. ندی میں پھینک دیا. یہاں بھی یہ شوٹنگ ہوتی ہے. کوئی بھی دھرم والے اپنی دھرم پتا کی وانی کا بہت قدر کرتے ہیں. لیکن بھارت ورش میں शास्त्रों की बहुत कदर करते हैं, समझते हैं भगवान के मुख से ये वाणी निकली है, वेदवाणी कहा जाता है। लेकिन ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में बाबा के मुख से निकली हुई वाणी का कदर नहीं हुआ। सारी वाणियां 5 साल की वाणियां ही उपलब्ध हो रही है, जबकि मुरली निकलती चली आई है कराची से, कराची से लेकर के 68 तक की मुरलियां सारी गायब हो गई, फाड़ फाड़ करके फेंक दिया। जैसे भगवान की वाणी की कोई वैल्यू नहीं, उस पर विचार करने की जरूरत ही नहीं। वो साधारण मनुष्य होते हैं, उनकी वाणी के ऊपर लोग विचार करते हैं, इसका गुह्यार्थ क्या है, क्या बोला, इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए। तो शूटिंग होती है हर बात की, है कि 5 बार नमाज पढ़ने की भी शूटिंग यहां होती है, और जब नमाज पढ़ते हैं तो कानों में उंगली रहने की भी शूटिंग यहां होती है। कैसे? किसी की बात मत सुनो, कान में उंगली दे लो, शिव बाबा को याद करो, अल्लाह हो अकबर। और
भगवत द्वापर कलयुग में भी ऐसी आत्माएं हुई हैं जो प्योरिटी को धारण करती रही हैं, जैसे जो इस्लामियों में या मुसलमानों में किससे मशहूर हैं, क्या बोलते हैं, हीर रांझा, लैला मजनू।
ये हीर रांझा की कहानी की कोई हिस्ट्री नहीं है, ये संगमयुगी यादगार है। पहाड़ काट करके नदी निकाली, ये संगम युग की बात है। पहाड़ जैसे खड़े हुए विघ्न को खत्म करना और फिर ज्ञान की नदी बाहर करके बाहर लाना संसार के सामने, जिसको शास्त्रों में लिख दिया है ज्ञान की गंगा लाए, भागीरथ का काम हुआ, उसको हिंदू में भागीरथ नाम दे दिया है, मुसलमानों की कथा में उसको हीर और राजा नाम दे दिया है। और
बाबा, जब संपूर्ण विनाश होगा तो सभी 500 करोड़ आत्माएं जाएंगी, पशु पक्षी इनकी आत्माएं भी चली जाएंगी,
हो रह जाएंगी क्या? मनुष्य इतने उपक्रम कर लेता है, अंडरग्राउंड बना लेता है, एटम बमों का विस्फोट होता है, भूकंप आते हैं, अंडरग्राउंड में चला जाता है, अपने को सुरक्षित करने का प्रयत्न करता है, जीव जंतु तो कुछ भी प्रयत्न, वो कैसे बचेंगे? उनके बचने का कोई तरीका है क्या? वो भी जाएंगे। और जीव जंतु तो सब मनुष्यों की सुरक्षा के लिए और मनुष्यों के लिए मनोरंजन पैदा करने के लिए है, और जीव जंतु जो हैं वो उनमें मन नहीं है, उनमें बुद्धि नहीं है उतनी। मनुष्य तो बौद्धिक प्राणी है, मननशील चिंतनशील प्राणी है, तो मनुष्यों के लिए सारी दुनिया है और सारी दुनिया मनुष्यों के आधार पर टिकी हुई है। मनुष्य जब परिवर्तन होते हैं तो सारी दुनिया परिवर्तित हो जाती है, मनुष्य वाइब्रेशन बनाते हैं तो सारी दुनिया का वाइब्रेशन सुधर जाता है। जानवर वाइब्रेशन बनाएंगे क्या? जानवरों को मन होता है क्या? वो मन को कंट्रोल करेंगे क्या? हाँ जी
बाबा, ब्रह्मा बाबा को जन्म देने वाले जगदम्बा और
जगत पिता
पिता है, लेकिन उनकी बुद्धि में ये बात आई नहीं कि ये मेरे माँ बाप है।
ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में ये बात नहीं आई, तो बच्चा बुद्धि किसे कहा जाए? बच्चा ये जानता है, छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो छोटा बच्चा जानता है मेरे माँ बाप कौन है, ماں کو پھر بھی بھلے پہچان لے لیکن باپ کو, باپ کو نہیں پہچانتا. اس لیے ماں تو پھر بھی یگ میں رہی, جگدمبا ماتا یگ میں برہما بابا کے ساتھ رہی, لیکن باپ کی پہچان برہما کو نہیں ہوئی. اس لیے جو سنستھا بنائی سن 47 میں, اس کا نام کیا رکھ دیا, ماؤنٹ آبو میں آ کے اس کا نام رکھ دیا برہما کماری وشودیالے. پرجا پتا بھی ہونا چاہیے, یہ ان کی بدھی میں نہیں آیا. اس کا پروف ہے, اس کا پروف ہے کہ شروعات سے ہی برہما کماری ودیالے لٹریچر میں چھپے ہوئے, کہیں بھی پرجا پتا برہما کماری ودیالے نہیں چھپا ہوا. ابھی بھی وہ اپنے نام کے آگے پرجا پتا نہیں لکھتے ہیں.
دوپہر یوگ سے پہلے کی ہسٹری نہیں ملتی ہے, اور دوپہر یوگ کے آدھی میں دھرم ارد وناش ہوگا, اس میں دوپہر جی کی 8-10 کروڑ آتمائیں بچیں گی, وہ کیسے بچیں گی؟ اور
ہاں جو بھی بات پوچھے ایک بات پوچھیے اکٹھی نہیں. ہاں
دوپہر یوگ سے پہلے کی ہسٹری نہیں ملتی ہے,
دوپہر یوگ سے پہلے کی ہسٹری نہیں ہے منشیوں کے پاس, کیونکہ دویتوادی یوگ تھا ہی نہیں, دو دو باتیں تھی ہی نہیں, ایک ہی سچائی تھی, ادویت یوگ تھا. کیا دوسرا کچھ تھا ہی نہیں, کوئی پرکار کا جھگڑا تھا ہی نہیں, تو ہسٹری کس بات کی لکھیں؟
اور دوپہر یوگ کی آدھی میں ارتھ وناش ہوگا,
ہوتا ہے
ہوتا, اس میں دوپہر یوگ کی 8-10 کروڑ آتمائیں بچیں گی, وہ کیسے بچیں گی؟
0.5 کروڑ آتمائیں بچیں گی,
8-10 کروڑ,
8-10 کروڑ آتمائیں بچتی ہیں, کیسے بچیں گی؟ 8-10 کروڑ آتمائیں بچیں گی نہیں, विनाश होने से पहले, अर्ध विनाश होने से पहले 8-10 करोड़ की दुनिया की आबादी होती है, दुनिया माने भारतवर्ष की, बचेंगी नहीं इतनी.
अर्ध विनाश होगा,
हाँ अर्ध विनाश होगा उस समय, विनाश होने से कैसे, भूकंप आता है
तो वो कैसे बचेंगे?
वो इसी तरह बचेंगी जैसे अभी भूकंप आते हैं, जैसे भुज में भूकंप आया تو سب مر گئے کیا؟ کچھ بچے نا, تو ایسے ہی وہ ارد وناش تو ابھی کے جتنے بھوکمپ آئے ہیں ہسٹری میں ان کے مقابلے تو بہت بھینکر تھا, تو کچھ نہ کچھ تھوڑے بہت بچتے ہیں, ایسے نہیں سب خلاص ہو جاتے ہیں. جیسے ابھی سمپورن وناش ہوگا تو 500 کروڑ منشیہ شریر سب خلاص ہو جائیں گے کیا؟ سب خلاص ہو جائیں گے؟ نہیں خلاص ہو جائیں گے, کچھ نہ کچھ بیج ضرور بچیں گے. تو ایسے ہی وہاں بھی دواپر کے انت میں جو اردھ وناش ہوتا ہے اس میں اور دھرم کے جو بھی بیج ہیں جو ششٹی کے آدھی میں بھی تھے وہ بیج ضرور بچیں گے.
کبھی تو نئے دھرم صاحب
بیج کا کبھی وناش نہیں ہوتا.
اور جو بچیں گے ان کو سادھو تیدا کی سمرتی کیسے بھولیں گے؟ جو بچیں گے 8-10 کروڑ, مطلب
8-10 کروڑ تو وناش سے, ارد وناش سے پہلے کی بات ہے.
ہاں ہاں, لیکن وہ ان کو سادھو اور تریتا کی سمرتی کیسے بھولے گی؟
ان کو کوئی اسمرتی نہیں رہتی ہے. جیسے کسی آدمی کو بھینکر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اسے ایکسیڈنٹ کے بعد اسے اسمرتی سب غائب ہو جاتی ہے, ایسے ہی وہ ارد وناش بھی اتنا بھینکر ہوتا ہے ستیہ کو تریتا کی ساری اسمرتی غائب ہو جاتی.
بابا یہ ماں بھارت میں شکھنڈی کا پاٹ بتایا ہے, وہ اس سمے پھر شکھنڈی کون ہے؟
اس سمے شکھنڈی سکھا انڈی, کیا کوئی چوٹی کا براہمن ہی ہوں گے؟ کیسے براہمن ہوں گے؟ چوٹی کے براہمن ہوں گے, लेकिन अंडे बच्चे होंगे क्या? होंगे चोटी के ब्राह्मण, लेकिन जो चोटी के ब्राह्मण हैं उनके अंडे बच्चे हैं। वो सूर्यवंशी होंगे या चंद्रवंशी होंगे? अंडे बच्चे होंगे मना, बीज तो होंगे, बीज तो होंगे लेकिन रचयिता नहीं होंगे। क्या होंगे? रचना होंगे। माना रुद्रमाला में भी कोई ऐसे हैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी, जिनमें सूर्यवंशी है रचयिता, और रुद्रमाला में जो चंद्रवंशी हैं वो ऐसे अंडी बच्चे हैं जो भाव स्वभाव से कुछ समय पुरुष का पार्ट बजाते हैं और कुछ समय स्त्री का पार्ट बजाते हैं। जैसे रुद्रमाला में जगदम्बा है, चोला स्त्री चोला है, लेकिन रुद्रमाला के बच्चों को लक्ष्य क्या मिला हुआ है? नर से नारायण बनना है और नारी से लक्ष्मी बनना है। तो रुद्रमाला के जो भी मणके हैं वो पुरुष स्वभाव के हैं या स्त्री स्वभाव के हैं? तो स्वभाव संस्कार से तो जगदम्बा भी क्या होगी? पुरुष स्वभाव की है, वो किसी से कंट्रोल्ड होने वाली नहीं है। राज करेगा खालसा, कंट्रोल करेगी, किसी से कंट्रोल्ड होने वाली, तो पुरुष वृत्ति के संस्कार हुए या स्त्री वृत्ति के संस्कार हुए? पुरुष वृत्ति के संस्कार। लेकिन चोला, चोला स्त्री का है। तो लास्ट जो टाइम होगा कंचन काया बनने का, उसमें स्त्री रूप ही रहेगा या पुरुष रूप हो जाएगा? हार्मोन्स चेंज होंगे या नहीं होंगे? हार्मोन्स चेंज हो जाएंगे, तो आधा समय स्त्री और आधा समय पुरुष। ये महाभारत में एक रूप दिखाया है। और
बाबा जगदम्बा ने ज्ञान का वजन सबसे ज्यादा उठाया, तो प्रैक्टिकली ऐसा क्या किया? 1983 से जब से समर्पित हुई है, ज्ञान का वजन ज्यादा उठाया मतलब क्या है?
एक होता है ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में धारण कर लेना, प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान उतार लेना, उससे अपना भी भला और दूसरों का भी भला। और एक होता है ज्ञान का बोझ तो ढोया, जैसे आज के सरस्वती आदि टाइटल धारण करने वाले वाराणसी के पंडित होते हैं, वो शास्त्रों का ज्ञान तो उठाते हैं, वजन तो ढोते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में नहीं होता। इसलिए मुरली में बोला है मेरे साथ रहने वाले बच्चे मेरे को नहीं पहचान पाते, तो फिर ज्ञान का फायदा क्या हुआ? ज्ञान तो सारा है, ज्ञान का तिया पैचा करने में अगर शास्त्रार्थ किया जाए, वाद विवाद किया जाए, तो कोई बड़ी से बड़ी ब्रह्मा कुमारी जगदम्बा का मुकाबला नहीं कर पाएगी। लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में प्राप्ति, प्राप्ति क्या होती है? प्राप्ति स्थापना के आधार पर होती है या विनाश के आधार पर होती है? जितना स्थापना करेंगे उतनी ही पालना करेंगे, तो प्राप्ति बहुत होती है। जगदम्बा महाकाली का रूप धारण करती है, इसलिए भारतवर्ष में मां को कोई वर्षा परंपरा में नहीं मिलता रहा। इसका फाउंडेशन कहां पड़ा? यहां ब्राह्मणों की संगमी दुनिया में फाउंडेशन पड़ा। माँ का बच्चों में इतना जास्ती मोह हो जाता है कि वो अपनी परवाह नहीं करती। अंधा लूला लंगड़ा कोड़ी कुब्जा काना चोर डकैत लुच्चा लफंगा जैसा भी बच्चा होगा उसको अपनी गोद से बाहर नहीं करना चाहता। ये मोह जो है वो माताओं को लुटी होता है, इसलिए बोला है माताओं ने अगर मोह के ऊपर विजय प्राप्त कर ली तो समझ लो जगत जीत बन गई, पुरुषार्थ पूरा हो गया। देहभान ज्यादा होता है ना, देहभान ज्यादा होता है माताओं में, देह का होना पुरुषों में ज्यादा होता है या माताओं में ज्यादा होता है, कन्याओं माताओं में देह का ज्यादा, पुरुषों को इतना देहभान, पुरुष बड़े आराम से सन्यासी बन जाते हैं, नंगे होकर के घूमते हैं, स्त्रियां कोई ऐसे कर सकती है क्या? नहीं। इसलिए बोला है माता होती है साकारी और बाप होता है निराकारी। और
बाबा सीढ़ी के चित्र में कृष्ण की मूर्ति को पहले क्यों दिखाया गया?
सीढ़ी के चित्र में कृष्ण की मूर्ति को
अकेले क्यों दिखाया गया?
अकेले?
हाँ, राधा क्यों?
हाँ, वो तो पीपल के पत्ते पे दिखाई गई है ना, क्या जो कृष्ण की मूर्ति है वो पीपल के पत्ते पर दिखाई गई ना, वो कल्प वृक्ष की बात है।
माता जी मुझे सीढ़ी के चित्र में,
सीढ़ी के चित्र में क्या,
पहले लक्ष्मी नारायण की मूर्ति दिखाते हैं, बाद में एक कृष्ण की मूर्ति दिखाते हैं, सिंगल कृष्ण
की, उसको क्यों दिखाया?
द्वापर युग से जो भक्ति चालू होती है ना, उसमें पहले लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाते हैं,
लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है,
नीचे कृष्ण की पूजा होती है, सिंगल कृष्ण की। उन्होंने पूछा है सिंगल कृष्ण की पूजा क्यों होती है?
सिंगल कृष्ण की पूजा इसीलिए होती है कि यहाँ शूटिंग हो जाती है, पहले मम्मा बाबा दोनों के चित्र लगाते थे, धीरे से कोई सौतिया डाह वाली ने ब्रह्मा वो मम्मा का चित्र, वो कैसा क्या नाम, मम्मा का चित्र हटाई दिया और ब्रह्मा बाबा का चित्र लगा रहने दिया, ऊपर शिव ज्योतिबिंदु, नीचे ब्रह्मा बाबा और बाकी सब ब्राह्मण बैठे हुए। तो जैसी शूटिंग होगी वैसा ही तो बड़े ड्रामा में होगा।
जून में जो पत्रिका निकलती थी ज्ञानामृत वगैरह या बर्ड नहीं बड़ी, उसमें मम्मा का चित्र होता था
जी।
आजकल उन्होंने जो मैगजीन निकाली है उसमें प्रकाशमणि दादी का चित्र है, ब्रह्मा का हटा दिया, मम्मा का हटा दिया।
अभी तो जैसे दुनिया में इलेक्शन वगैरह होते हैं तो जो भी गद्दी पर बैठने वाले होते हैं या गद्दी पर बैठते हैं उनके चित्र अखबारों में बहुत छपते हैं, जब नोट बनाएंगे तो नोटों पर भी उनका चित्र छापने लग पड़ेंगे। जैसे क्रिश्चियंस होते थे तो नोटों पर किसका चित्र छापते थे? त्रिमूर्ति का, जो भी किंग एडवर्ड फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड जो भी हुआ उसका चित्र छापा। तो ये भारतवर्ष के लोग जो है वो विदेशियों को फॉलो करने लग पड़ते हैं, यज्ञ में भी ऐसे ही होता है। और
बाबा भक्ति मार्ग में प्रीति और दिल गिरते हुए गायना है,
हाँ जी,
और राजयुग के पानी से लेकर देवता के अंतर 10 करोड़ है पांच मिनट,
हाँ जी,
तो बाकी देव देवता कहाँ से आए?
कोई भी धर्म की आत्मा आदि से लेकर के अंत तक आवेंगी या बीच में आना बंद कर देंगी? कोई भी धर्म की आत्मा, हिंदुओं मुसलमानों सिखों ईसाइयों, जब आना शुरू करेंगी तो आते आते बीच में कभी रुक जाती है या अंत तक आती रहती है? अंत तक आती रहती है। ऐसे ही देवी देवता सनातन धर्म की आत्मा अगर बीच में आना बंद कर दे तो उनके 84 जन्म होंगे या कम हो जाएंगे? उनके जन्म ही कम हो जाएंगे, फिर वो ऑलराउंड पार्टधारी कहां हुए? इसलिए 35 करोड़ आबादी होती है कलयुग के अंत में जाकर, ऊपर से जो भी आत्माएं उतरती है वो उन 33 करोड़ देवताओं में प्रवेश करती रहती है। जो सबसे जास्ती जन्म लेते हैं वो ही सबसे जास्ती पतित बनते हैं, और ऊपर से आने वाली पावन आत्मा पतित में प्रवेश करेगी या पावन में प्रवेश करेगी? पतित में प्रवेश कर। और
बाबा एक चित्र में शंकर को चार भुजा में दिखा
है,
शंकर को चित्र में चार भुजा में दिखा है और चार भुजा दसी
शंकर जो है वो एक आत्मा का सम्मिश्रण है या कई आत्माओं का मेल है? हैं? तीन आत्माओं का मेल है, ब्रह्मा और राम वाली आत्मा, ये दो आत्माओं का संकरण हुआ। शिव तो दोनों में न्यूट्रल हो गया, उसको तो अलग कर दो, तो भाव स्वभाव की उसमें बात ही नहीं। तो दो आत्माएं हुई खास, राम और कृष्ण। फिर उनका विशेष सहयोग देने वाली कोई शक्तियां कोई आत्माएं होती है या नहीं? ब्रह्मा के साथ सरस्वती और राम के साथ सीता या शंकर के साथ पार्वती। अभी भी वो चारों आत्माओं का संकरण है, सहयोगी है विशेष एक दूसरे की, और अंत में उन चारों के संस्कार मिलकर के जब तक एक नहीं होंगे तब तक नई दुनिया की शुरुआत नहीं होगी। इसलिए ब्रह्मा को हजारों भुजाएं भी देते हैं, ब्रह्मा की हजार सहयोगी बन जाते हैं भुजाओं के रूप में, लेकिन शंकर के भुजाएं नहीं दिखाई जाती है हमेशा, सदा काल के उनके सहयोगी कोई बन नहीं सकते। इसलिए जगन्नाथ को भुजाएं दो हैं, वो भी टूटी हुई। माने जो सख्त पार्ट होता है उसको आज से अंत तक कोई सहयोग नहीं कर नहीं देते हैं, नंबरवार शक्ति अनुसार सहयोग देते हैं, लेकिन आज से अंत तक सहयोगी कोई बन करके रहे ऐसा ऐसा नहीं होता है।
एक नई बहन का प्रश्न है, बाबा अगर कोई आपका कर्मों के हिसाब किताब के कारण भक्ति अभी नहीं कर पा रही है लेकिन बाबा को पहचान लिया है तो उसका नंबर पहले होगा या भक्ति करने वालों का नंबर पहले होगा?
बाबा को नहीं पहचान पा रहे,
बहुत सी ऐसी बांधेली माताएं हैं जो बाबा से मिली भी नहीं है, भट्टी नहीं की है, लेकिन पत्र इतने अच्छे अच्छे लिखती हैं कि वो जो भट्टी करने वाले हैं उनके अंदर इतने भाव नहीं आ सकते। सबसे जास्ती ही बांधेली माताएं याद करती है या पुरुष याद करते हैं या कन्याएं ज्यादा याद करती है? ज्यादा याद किसको आती है? बांधेली माताओं को जास्ती याद आती है। तो उनकी तो भट्टी 24 घंटे की हो गई, उनकी तो भट्टी ही भट्टी लगी पड़ी है।
प्रश्न जो है ना माता की नहीं
है, प्रश्न तो
है। हाँ जी, बोलते मिल सकते हैं आपसे बच्ची के बिना मिल सकते हैं आपसे?
उनकी धारणा देखी जाएगी। हाँ जी, बोला भी है आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर तुम डायरेक्ट बाप से सीखो, कोई न कोई देवान रह जाएगा तब तक नहीं डायरेक्ट मिल पाएंगे। और
जितने भी मुनि मंडलम गुरु हैं वहाँ अगर कोई भक्ति करने के योग्य नहीं है शारीरिक रूप से अथवा तो
मुरली में बोला है इस बात को मैं नहीं मान सकता कि बाप से मिलने के लिए कोई के पास पैसे न हो।
शारीरिक रूप से
बूढ़ी बूढ़ी 80 साल की माताएं अमरनाथ की यात्रा करके आ जाती है, वो भी उस जमाने में जबकि कोई भी साधन नहीं मिलते थे। और आज तो कोई बीमार धीमार दुखी रोगी परेशान होता है वो भी विलायत में जाके अपने इलाज करा के वापस आ जाता है। तो यहाँ तो चलने फिरने की भी बात नहीं है, ये सब बहानेबाजियां हैं। और
कई बाबा से डेट वापस मिली है उनका जबान टूटता है, कई माताएं डेट वापस मिली है उनका बहान ही टूटता है उनके क्या बात।
उनका अपना अपना हिसाब किताब है, सबको अपने अपने हिसाब किताब अनुसार ही प्राप्ति होगी। हाँ जी, और
अब ये जो बूढ़ा अमरनाथ है इसका क्या बेहद में क्या अर्थ है? बूढ़ा अमरनाथ,
बूढ़ा
अमरनाथ, बूढ़े अमरनाथ की भी इधर यात्रा होती है।
तो बहुरूपी है, कभी बूढ़ा बन जाता है कभी नौजवान बन जाता है। अभी आजकल शंकर के चित्र बने हुए पट लेटा पड़ा है बच्चे के रूप में, तो वो तो बहुरूपी है।
बूढ़े का अर्थ क्या
है? बूढ़े का मतलब है बहुत अनुभवी, थोड़ा अनुभवी नहीं। और
जो गुरुओं और साधक
ऐसे तो बाबा ने मुरली में बोला है शिव बाबा कभी बूढ़ा होता ही नहीं।
बाबा जो अभी जो गुरुओं और साधु संतों के पीछे लोग डेरों के लिए जा रहे हैं उनको शिव बाबा का संदेश मिलेगा?
क्यों नहीं मिलेगा?
कैसे मिलेगा?
ऐसे मिलेगा कि बाबा ने बोला आगे चल के मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे ये सब चलने लग पड़ेंगे। क्या ये सन्यासी ऐसे मरेंगे जैसे पशु मरते हैं, इनके मुंह में कोई पानी डालने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि सब डरते हैं इनको ज्ञान कौन सुनाए जाके। ये जिंदगी भर जन्म जन्मांतर हमको ज्ञान सुनाते रहे, हमारे अहंकार के इन्होंने कभी किसी की बात मानी नहीं। और
बाबा रुद्र ज्ञान जग और शिव ज्ञान जग में अंतर शिव ज्ञान एक ही नहीं होता है?
शिव ज्ञान जग होते
विनाश ज्वाला रुद्र ज्ञान यज्ञ से प्रज्वलित होती है। मेरा नाम तो शिव ही है, मेरी बिंदी का नाम शिव है, वो कभी बदलता नहीं है। क्या जब शरीर में प्रवेश करते हैं तो नाम बदल जाता है, तो शरीर का नाम पड़ता है। जैसे जैसे शरीर से काम होते हैं वैसा वैसा नाम पड़ता है। तो कोई शरीर के द्वारा रौद्र रूप अर्थात विकराल रूप धारण किया होगा, यज्ञ के आदि में भी एंटीओम मंडली हो गई थी, विकराल रूप धारण किया था, नाम पड़ गया रुद्र ज्ञान यज्ञ। फिर यादगार बनी हुई है, रुद्र यज्ञ रचते हैं तो लाखों लाख शालिग्राम बनाते हैं। क्या करोड़ों नहीं बनाते हैं, लाख दो लाख शालिग्राम बनाते हैं, दो लाख भी नहीं बन पाते, बहुत टाइम लगता है। लाख शालिग्राम का गायन ज्यादा गायन है, इसका मतलब यह हुआ कि 9 लाख जो सितारे हैं उनमें 4.5 लाख हैं जन्म लेने वाले, वो तो रुद्रमाला के हैं ही नहीं, बीज नहीं है। जो जन्म देने वाले हैं वो 4.5 लाख है, हाँ 4.5 लाख। और उन 4.5 लाख में भी सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बहुत थोड़े हैं, बाकी और दूसरे वंश के हैं बीज, तो 1-2 लाख कहे जाते हैं। और
4.5 लाख में भी सब धर्म की आत्माएं तो है ना,
हर धर्म के बीज हैं, जो बीज रूप स्टेज प्राप्त करते हैं शरीर रहते, तो उनकी यादगार बनी हुई है शालिग्राम के रूप में, उसमें बंधन दिखाया जाता है, माने जन्म मरण के चक्र में आने वाले हैं।
बाबा हिमाचल में जो मंदिर है ज्वाला माता का, वहां पर जो झुकी झुकी है,
अरे
वो कैसे झुकी है, शक्ति है माता की, यहाँ माता की शक्ति है या क्या है वहाँ?
कैसे
वो ज्योति स्थूल जगती है कि ज्ञान की ज्योति जगती है? तो भक्ति मार्ग में जो भी अजीबो गरीबा सुनने में आता है, देखने में आता है, वो सब स्थूल बातें हैं, यादगार कहाँ की है? संगम युग की यादगार है। और
साधु क्रेता में रात होती है या नहीं होती?
ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन गाया हुआ है। क्या गाया हुआ है? ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन गाया, ब्रह्मा की रात और दिन, सो ब्राह्मणों की रात और दिन, प्रजापिता का दिन और रात गाया हुआ है। तो ब्रह्मा है चंद्रवंश और प्रजापिता है सूर्यवंश, तो जो नई दुनिया की शुरुआत होगी वो चंद्रवंशियों से होगी या सूर्यवंशियों से होगी? सूर्यवंशियों से होगी है? तो जहां सूर्य ही सूर्य है, चंद्रमा का प्रकाश सूर्य में मर्ज हो गया, या सितारों का प्रकाश भी सूर्य में मर्ज हो गया, तो वहां चंद्रमा कैसे दिखाई देगा? वहां सूर्य की रोशनी ही रोशनी रहेगी, जैसे उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पे 6 महीने दिन ही दिन रहता है।
राधे कृष्ण के माँ बाप का गायन क्यों?
संगम भी राधे कृष्ण के माँ बाप का गायन नहीं है, सती भी राधे कृष्ण की तो बात ही नहीं,
क्यों नहीं?
सत्य की राधा कृष्ण के माँ बाप की बात होगी, सत्य की राधा कृष्ण, सत्य की राम, त्रेता युग की राम सीता, इनकी कोई हिस्ट्री मिलती है क्या? शास्त्रों में हिस्ट्री है? शास्त्रों में भी नहीं है। कहाँ की हिस्ट्री है? संगम युग की बातें हैं, माने संगम युग में जो राधा कृष्ण है वो अलग अलग घराने के हैं, राधा है चंद्रवंशी और कृष्ण है सूर्यवंशी, और कृष्ण के साथ कंस दिखाया जाता है, तो वो कंस सतयुग में होता है या संगम युग में होता है? तो अभी कृष्ण भी है और कंस भी अपना काम कर रहा है। लोग पूछते हैं तुम्हारा भगवान है तो भागा भागा क्यों फिरता है? अरे तुम इतने शास्त्र पढ़ते हो, उन शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है? कंस के डर से कृष्ण भगवान गांवों गांवों में छुपते फिरे, भस्मासुर के डर से शंकर भगवान सारी दुनिया में डोलते डोलते फिरे, रावण के डर से तुम्हारे राम भगवान जंगलों में मारे मारे फिरे। अरे वो भगवान नहीं तुम मानते क्या? कहां की भी यादगार है? संगम की यादगार है। और
बाबा जो मंदिरों में शंकर की मूर्ति दिखाते हैं उनके सामने शिव की शिवलिंग दिखाते हैं, वो उसके ऊपर कलश दिखाते हैं, कलश दिखाते हैं,
शिवलिंग के ऊपर कलश दिखाते हैं,
उसमें बूंद बूंद पानी गिरता रहता है, उसका क्या
मतलब? जो विग्रह दिखाते हैं शरीरधारी का वो है देहभान की यादगार। जब देहभान होता है तभी कोई याद करता है, जब देहभान खत्म ही हो गया तो बिंदी बन गया ना, बाकी तो बात ही नहीं। लेकिन जब बिंदु रूप स्टेज बनती है, निराकारी स्टेज बनती है, जिस मुकर्रर रथ में शिव प्रवेश करता है और उसकी मुकर्रर निराकारी स्टेज बन जाती है, तो उसकी यादगार लिंग बनता है। लिंग इतना बड़ा होता है या उसमें बिंदु सुप्रीम सोल की यादगार है, बिंदु सुप्रीम सोल की यादगार है, और लिंग जो है वो साकार विग्रह की यादगार है। जो साकार विग्रह को इंद्रियां तो हैं, लेकिन इंद्रियों के होते हुए भी इंद्रियों का भान जैसे नहीं है। भले जे संसार में कितनी भी ग्लानी होती रहे, वो कानों से एक कान से सुनेगा दूसरे कान से निकाल देगा, देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना। ऐसे ही कर्म इंद्रियों से कर्म करते हुए भी किया किया न किया, हम कर्म इंद्रियों से कर्म करते हैं तो हमको याद आता रहता है जिंदगी भर, आता है कि नहीं याद आता है, और उसको उसको याद नहीं आएगा। क्यों नहीं याद आता? क्योंकि निराकारी स्टेज एक ऐसी स्टेज है जिसमें मन एक के ऊपर आग्रह है, तो कोई की स्मृति ही नहीं है। जब स्मृति नहीं है तो जैसे भोग भोगा भोगा न भोगा। इसलिए ये बात समझ में आती है कि जो ऊपर कलश रखा हुआ है वो निराकारी स्टेज में जब नीचे उतरेगा तो बूंद बूंद ज्ञान टपकता है बुद्धि में। क्या जितनी जितनी हम निराकारी स्टेज में टिकेंगे उतना मनन चिंतन मंथन जास्ती चलेगा, माने बूंद बूंद ज्ञान टपकता रहेगा, सारा एडवांस नॉलेज एकदम आ जाता है बाहर। है टाइम लगता है। और
हमारे एक प्रश्न और, वो एक मुली ने बोला आपको कौड़ी से हीरा बना, हीरे जैसे बनाएंगे, इसका अर्थ
स्त्री हो या पुरुष हो, स्त्री को अपने शरीर के अंगों का बहुत भान रहता है, देह भान रहता है, उसका शरीर कौड़ी मिसल होता है, आकार स्त्री के अंग का स्पेशल जो कौड़ी मिसल होता है इस आधार पर उसको स्त्री कहा जाता है। और पुरुष जो है वो जिंदगी भर एंटी सेक्स को याद करते हैं, पुरुष किसे याद करेगा, स्त्री को याद करता है काम विकार की प्रधानता होने के कारण। तो ये पुरुष जब मरेगा तो स्त्री चोला याद आएगा, सारा जीवन जो याद किया तो अंत मते सोगते हो जाती है, तो उसको वो ही कौड़ी याद आती है। तो पुरुषों को तो कौड़ी याद आती ही आती है, लेकिन स्त्रियों में देहभान होता है अपने अंगों का, इसलिए उनको भी वो ही याद आता है, इसलिए कौड़ी मिसल जीवन हो गया। अभी आत्मा में जो बुद्धि में, आत्मा माने बुद्धि, मन बुद्धि, मन बुद्धि में मरते दम तक क्या याद आता है, कौड़ी याद आती है, कौड़ी में लगाव लग जाता है, इसलिए कौड़ी में सल जीवन हो गया। और जिसकी बुद्धि निराकारी बन जाती है वो जैसे हीरा बन गया, उसमें ज्ञान ही ज्ञान टपकेगा, देह की याद चाहते हुए भी देह को याद करना चाहे तो भी नहीं याद आएगा।
परमात्मा
हीरा
बनाने के लिए
आएगा, हाँ, मन बुद्धि रूपी आत्मा को ऐसा बनाते हैं जिसमें हीरा ही चमक मारने वाला, ज्ञान की चमक मारने वाला हीरा ही याद आता है, स्टार ही याद आवेगा, बुद्धि नीचे नहीं उतरेगी। हाँ
बाबा, बड़े लोग बनते हैं वो बोलते हैं 83 लाख जून होगी, पशु तो फेरु बनेंगे, हम जब मर जाएंगे तो उनकी बुद्धि से कैसे निकलेगा कि पशु नहीं बनेंगे, तो कैसे समझाना पड़ेगा।
उन्हें बताना पड़े कि कोई भी बीज होता है तो बीज में अपने संस्कार होते हैं कि नहीं। बीज में जैसे संस्कार होंगे वैसा ही वृक्ष तैयार होगा। आम का बीज होगा तो आम का दरख्त बनेगा, आम के फल निकलेंगे। बैंगन का बीज होगा तो बैंगन का पौधा बनेगा और बैंगन ही उसमें पैदा होगा। ऐसे थोड़े ही कि बैंगन में से आम निकल आएगा, नहीं निकलेगा ना। तो ऐसे ही मनुष्य आत्मा जो है, पहले उनको समझाओ तुम ज्योति बिंदु हो। जो भी आत्माएं हैं, जो भी शरीरधारी हैं, वो शरीर नहीं है। शरीर तो आज है कल खत्म हो जाएगा, लेकिन उनकी आत्मा तो कायम रहेगी। तो आत्मा है, जब आत्मा ये बात बुद्धि में बैठ जाएगी तब ये बताओ कि तुम भी बीज हो। और किस जाति के बीज हो, मनुष्य जाति के हो या पशु पक्षी जाति के हो या कीड़े मकोड़े की जाति के हो, जिस जाति के होंगे उसी में जन्म लेंगे।
बाबा हमारे पति ज्ञान नहीं चलते आई, अब संसार संसार खराब ठीक हो गया, मतलब अपने घर ही मर गए। अब उनसे हुआ भाई हम का करें बाबा, कौन उपाय करें। अब बोलते हैं कि हम अपने भगवान की पूजा पाठ करें कि हम चले श्री बाबा के मतलब ज्ञान सुने, ये भी बोलते हैं।
एक बार खड़ी हिंदी में बोल दो।
हमारे पति नहीं कर दिया ज्ञान।
हाँ,
अपने घर में मरेंगे चाहे जन्म दिया।
अपने घर में मरेंगे तो उन्हें ज्ञान दो ना, कि आप जो कहेंगे हम मरेंगे हम मरेंगे, तुम तो आत्मा हो अजर अमर अविनाशी, तुम थोड़े ही मरोगे। तो ये उनको बताओ ना, तुम कहां क्यों कहते हो हम मरेंगे, तुम तो मरने वाले हो ही नहीं, तुम तो आत्मा हो। कभी कभी ऐसा होता है कि जब डंडा बजता है तो आंखें खुल जाती
है।
वो हमारी कमजोरी है, हम खुद भूल जाते हैं तो हम दूसरों को कैसे पक्का याद करा दें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
बाबा जो नौ आते हैं ना सूरजी, से कोई ऐसी आत्मा है जिनमें कोई प्रवेश नहीं होती
है?
कोई ऐसी आत्माएं हैं सूरजी में जिसमें कोई दूसरे धर्म की प्रवेश नहीं होती?
कोई आत्माएं प्रवेश न करती हो? एक तो मुकर्रर रथधारी है जिसमें कोई प्रवेश नहीं करता है सिवाय सुप्रीम सोल के, है? और प्रवेश करता भी है तो उसके जैसा हो जाता है। जैसे ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है, सूक्ष्म शरीरधारी है, और जैसे ही उसके संपर्क में जाएगी वैसे ही बिंदु बिंदु बन जाएगी। और हाँ,
दूसरे धर्मों की प्रवेश करती हैं, उसके थोड़ा सा ऐसे ज्ञान थोड़ा सा दो होता, वो तो नहीं होता किसी में। जैसे किसी के बाबा चलते हैं, चलते चलते सुस्ती आया जाती है ना, वो
क्या बोला?
जो बाबा के बच्चे हैं उसमें इंस्पेक्टिंग आत्मा प्रवेश करते हैं ना।
हाँ,
कभी डेला हो जाते हैं, मतलब हमने ऐसे कोई सोच प्रवेश कर रहे क्या? ऐसे पूछ रहे हैं जब हम दो।
इंस्पिरेटिंग का मतलब है इंस्पायर करने वाली, उमंग उत्साह बढ़ाने वाली। तो जब हम उमंग उत्साह में आते हैं, ईश्वरीय सेवा करते हैं, उस ईश्वरीय सेवा का रिजल्ट भी देखते हैं, तो इससे साबित होता है कि कोई आत्मा ने प्रवेश करके हमसे काम कराया। लेकिन कभी हम डाउन हो जाते हैं तो इंस्पिरेटिंग पार्टी थोड़े ही है वो तो हमारे पूर्व जन्म का हिसाब किताब है जिसके आधार पर हम डाउन हो जाते हैं।
बाबा ब्रह्मा बाबा की आत्मा जो है वो ज्यादा दिन तक में कब तक आती रहेगी?
जब तक सूर्य प्रत्यक्ष नहीं होगा तब तक, दूसरी तरफ संपूर्ण चंद्रमा कैसे वो जब तक ज्ञान सूर्य उदय नहीं होगा तब तक दूसरी तरफ ज्ञान चंद्रमा अस्त कैसे हो जाएगा? जब पूर्णमासी का दिन होता है, पूर्णमासी माना चंद्रमा जब पूर्ण हो जाता है, होता है कि नहीं? चंद्रमा जब संपूर्ण बनता है तो ज्ञान चंद्रमा कौन है? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जब संपूर्ण बनेंगे माने उनकी बुद्धि में ये बैठ जाएगा कि गीता का भगवान मैं कृष्ण वाली आत्मा नहीं हूं। एक बात पर रुका हुआ सारा काम। तो उस समय तक उनका यही पाठ चलता रहेगा, अधूरा ब्रह्म है, पूर्णमासी का चंद्रमा नहीं है, अधूरा चंद्रमा है, तब तक शंकर के मस्तक पे विराजमान है। जैसे ही संपूर्ण बनेगा अस्त होगा और सूर्य प्रत्यक्ष हो जाएगा। लेकिन तुम्हें परेशानी क्या है उनके आने से? है वो आते हैं तो कम से कम कुछ न कुछ राज की बातें ही मिलती है ना।
है बाबा कहते हैं ना मुरली के विरुद्ध तो ब्रह्मा वो नहीं बोलती, इसका अव्यक्तवाणी को भी श्रीमद कहा जाता है। लेकिन बहुत नया लोग पूछते हैं तो उसमें अव्यक्तवाणी में दादी दीदियों के लिए पर्सनल बातें पूछते रहते हैं, बाप दादा दादी क्या कर रही हो, क्या कर रहे हो, फलाना बिंदु वाले क्या कर रहे हैं, हाथ उठाओ, ये सब तो पहले मुरली में नहीं होता था। ये सब फालतू बातें हो गया ना अव्यक्तवाणी के दूसरे पेजेस पे, तो वो भी बाबा क्यों पढ़ते? हम तो समझाते हैं सभी बाकी धर्मों की आत्मा हो गया दादी दीदी, खुद बाबा मुझसे पढ़ते हैं।
शिव बाबा सारी दुनिया को पढ़ाने आया है या सिर्फ सूर्यवंशियों को ही पढ़ाने आया है? शिव बाबा का कनेक्शन हर धर्म की आत्मा से है या कोई विशेष धर्म की आत्माओं से ही है? आता है, खास आता है भारतवासियों के लिए, सूर्यवंशियों के लिए, लेकिन आम रूप से सारी दुनिया का कल्याणकारी है।
ऐसे जो अव्यक्तवाणी में दादियों के लिए ऐसे बोलने से नयों की बुद्धि में जो कमजोर आत्मा है उनको बाबा दादियों के लिए बोले तो कितना?
जो कमजोर आत्माएं होती हैं उन्हीं के अंदर ईर्ष्या देश होता है कि दीदी दादियों से इतना क्यों ऐसे मिक्स हुए पड़े हैं, उनको क्यों पूछते, हमको क्यों नहीं पूछते? राज उनकी बुद्धि में नहीं बैठा है, इसलिए देखा जाए तो दीदी दादियों को तो कुछ भी नहीं मिला, उनको तो सिर्फ ब्रह्मा बाबा बहलाए रहे हैं, तो बहलाने भी नहीं देंगे। और
बेसिक वाला कहता है क्लास और ग्लास मिस नहीं करना, मतलब बहुत बार चाय दे दिए रहते हैं, जब कौन चाय मना करते कितना भी समझाने से, क्लास में चाय मना है, बेसिक वाले तो चाय पीते।
तो
क्यों ऐसे चाय क्यों नहीं पी
सकते? चाय क्यों नहीं पी सकते? अरे एडवांस वाले तो मुरली को मानते हैं, बेसिक वाले तो मुरली को नहीं मानते, दीदी दादियों को मानते हैं। और मुरली में बोला है कि देवता ने चाय पीते हैं क्या? फिर तुम्हें देवता बनना है ना, तो देवताओं का जो खान पान है सो खाओ पियो। हाँ जी, और
तो आज वो पूजा हो रही है, मैं देखती हूँ चैतन्य मैं देवियों की ज्यादा पूजा होती
है,
जो मंदिर बने हुए हैं ये क्यों दिखाया है इतना देवान ऊपर क्यों जोर दिया हुआ है?
देवान होता है तो पूजा क्यों होती है? उन्होंने अपने को पूज्य बनाया होगा, नहीं बनाया होगा? पूज्य बनाया होगा तभी तो पूजा होती है कि ऐसे ही पूजा हो रही है? तो फिर आप ऐसा पुरुषार्थ किया होगा कि पूजी बनी होंगी।
बाबा क्यों बोलते हैं कि इतना देवान है स्त्रियों के देव?
वो तो अभी बोलते हैं ना कलयुग के अंत में, जब लक्ष्मी बन जाएगी तब थोड़ा ही बोला जाएगा, तब वो पूजनीय हो जाएगी। है
बाबा बहुत लोगों का प्रश्न है कि बाकी मिनी मदन पे कैसे खाते रहते, तो पूछते हैं कि महीने में दो दो बार जाते हैं, हर बार जाते रहते, तो जम्मू जल्दी क्यों नहीं पहुँच पाते?
जम्मू वालों से पूछो कि तुमने जम्मू शहर जो बसाया है वो गोल चक्कर में क्यों नहीं बसाया जिसमें दिल्ली के सब शहर आ जाते हैं, एक तरफ जाके वहां टुंडगस में जाके क्यों बैठ गए? गोल चक्कर में होगा तो सब जगह एक ही चक्कर में सब जगह चले गए, और अलग एक तरफ जाना पड़ेगा दिल्ली से तो वहां जाओ फिर वापस आओ तो दुगना टाइम लग जाएगा ना।
अगले
कल्प
में
जम्मू
शहर
उठा के दिल्ली जम्मू शहर जो है
वो दिल्ली के
नजदीक
ही बसा दिए।
तो अभी बसा दो, अगले कल्प क्यों ठेल रहे
एक साइड पे नाम
बढ़े। हाँ हाँ, तो अभी नहीं कर सकते जो काम अगले कल्प के लिए सोच रहे हो वो अभी क्यों नहीं कर लेते हैं? अरे जब पाकिस्तानी हिंदुस्तान में मिल जाएगा तो चक्कर बड़ा हो जाएगा ना, उसमें जम्मू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा?
बाबा अभी जम्मू में जो इधर वैष्णो देवी का मंदिर है पहाड़ियों के बीच में बनाया हुआ है बहुत ऊंचाई में, उनके पीछे जैसे असुर था भैरवनाथ था वो उनकी गर्दन काट के उससे भी ऊपर ऊंचाई में
तो वो रुद्रमाला का मणका होगा। और
मुरली में जो ज्ञान बता रहे हैं ज्ञान तो अमृत जो है वो एडवांस पार्टी वाले मिलना
है
तो भक्ति मार्ग में बताया गया है कि जो समुद्र मंत्र किया था
है
समुद्र मंत्र करने करने लगे तो राक्षस को लगाया था नाग मुख तरफ
है
देवता को लगा दिया पूछ तरफ
है
तो जो अमृत को मिला
है
वो तो मेरा राक्षसों को
राक्षसों को कहाँ मिला? देवताओं को पहले बांटा गया भाई,
राक्षसों को मिला बांटा गया था
भले बांटा गया लेकिन उनका सर काट दिया।
जब विष्णु आ गया ना लक्ष्मी राव उतार गए
हाँ जी उनका सर कलम कर दिया इसलिए वो राक्षस के राक्षस ही बने रह गए। हाँ वो अंदर तक नहीं पहुंच पाया अमृत और देवताएं जो है पूरा हजम कर गए। वो और चालाकी से लिया है या उन्होंने हिस्से से लिया? चालाकी से लिया ना तो भगवान के सामने चालाकी चलेगी?
अमृत तो जो मिला वो तो राक्षस को मिला,
अमृत मिला न मिला बराबर हो गया।
बाबा उनका कहने के ये मतलब है विष्णु स्त्री के रूप में आके अमृत बांध रहा चाहे चाहे किसी का भी बांधता लेकिन विष्णु आके बांधता था
हा?
तो अभी विष्णु का पाठ आई नहीं है वैष्णव तो? पहले जो भी ज्ञान ले रहे एडवांस ज्ञान
नहीं नहीं ये कहो कि माला नहीं बनी अभी, जब वैष्णवी आएगी तो माला तैयार हो जाएगी।
कब आएगी बाबा?
जब आएगी जब आह्वान करेंगे तब आएगी। बाबा ने तो डायरेक्शन दे दिया कि विजय माला का आह्वान करो। अच्छा टाइम हो गया।